आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर।
दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 16 अप्रैल 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का, भव्या पांडे के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आज के कार्यक्रम में लगाएंगे हंसी के ठहाके और बात होगी कॉमेडी की। लेकिन आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो अगले घंटे में सबसे पहले हम सुनेंगे आज के ताजा समाचार। आज की शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से जिसने ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है, विपक्ष के नेता एंगस टेलर की नई और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी। ये फैसला आते ही विवादों में घिर गया है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बदलाव जरूरी है या इससे और बड़ी बहस छिड़ने वाली है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आप तक लेकर आऊंगी, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक अलग सी दुनिया में जहाँ साहित्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। टेक एक्सपर्ट बालेंदु शर्मा के साथ बातचीत में हम समझेंगे कि AI ने नवंबर 2022 के बाद कितनी बड़ी छलांग लगाई है और आने वाले समय में ये रचनात्मक दुनिया को कैसे बदल सकता है। थोड़ा हल्का मूड चाहिए तो तैयार रहिए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के खास सेगमेंट के लिए, जहां बड़ी बातें आसान अंदाज में आपको समझाई जाएंगी। और आखिर में, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आज का जो शो है वो कॉमेडी पर होगा, तो शो का सबसे मजेदार ट्विस्ट हम मिलेंगे कॉमेडी की दुनिया की दमदार आवाज शारुल चन्ना से। मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में उनकी परफॉर्मेंस ने जहां लोगों को हंसाया, वहीं कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हाल ही में वे SBS हिंदी के स्टूडियो भी आई थी और ये खास बातचीत जो है हम आपके पास दो भागों में लेकर आएंगे, जिसका पहला भाग हम आज सुनेंगे। तो बने रहिए आज के शो में, क्योंकि आज के शो में है जानकारी, इनसाइट्स और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज। कुछ बढ़िया से गाने भी आपके लिए लेकर आऊंगी और आज का जो खास सवाल है वो भी आपको जल्द बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर में क्या हो रहा है। प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने पर्शियन गल्फ के सभी प्रमुख बंदरगाहों को बंद करने की चेतावनी दी है। आपको बता दूं कि ये कदम अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में उठाया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अनुसार नाकेबंदी के पहले 48 घंटे में कोई भी जहाज अमरीकी नौसैनिक बलों को पार नहीं कर पाया है, जो इस ऑपरेशन की सख्ती को दर्शाता है। इस घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के अधिकारी तेहरान पहुंच चुके हैं और वे अमेरिका ईरान के बीच संभावित दूसरे दौर की बातचीत को संभव बनाने में मध्यस्थता करेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के अधिकारों और राष्ट्रीय हितों को स्वीकार करे। वहीं अमेरिका ने चाइना को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि वे ईरान को हथियार सप्लाई करता है या उससे तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया है और ऊर्जा आपूर्ति एक प्रमुख रणनीतिक मुद्दा बन गई है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजिंग अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम और शांति वार्ता के प्रयासों का समर्थन करता है। बात करें इन्फ्लेशन की तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर साफ दिखाई देने लगा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि यदि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष जल्द खत्म नहीं हुआ तो दुनिया एक संभावित मंदी की ओर बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होंने आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद कहा है कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक समय है। आईएमएफ की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऊर्जा संकट के कारण कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आज ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स रोजगार के आंकड़े जारी करेगा जो ये दिखाएंगे कि युद्ध का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बेरोजगारी दर 4.3% पर स्थिर रह सकती है जबकि मार्च महीने में लगभग 25,000 नई नौकरियां जुड़ने की उम्मीद है। ये डेटा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के बाद का पहला पूरा आर्थिक संकेतक होगा जिसने वैश्विक तेल व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं ऊर्जा संकट से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया सक्रिय कूटनीति अपना रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी आज मलेशिया में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य तेल गैस और उर्वरक की आपूर्ति को सुरक्षित करना है ताकि वैश्विक संकट का असर ऑस्ट्रेलिया पर कम पड़े। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि मौजूदा संसाधन स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एएमए ने अपने प्री बजट प्रस्ताव में कहा है कि लोगों को जीपी सेवाओं तक बेहतर और लंबी पहुंच मिलनी चाहिए, साथ ही अस्पतालों में भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है। हालांकि जनवरी में नेशनल कैबिनेट द्वारा 25 अरब डॉलर का सार्वजनिक अस्पताल फंडिंग समझौता किया गया था, लेकिन एएमए का मानना है कि ये भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के भेदभाव आयुक्त गिरिधरन शिवरमन ने सरकार से नेशनल एंटी रेसिज्म फ्रेमवर्क लागू करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की नई रिपोर्ट में सामने आया है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद यहूदी मुस्लिम फिलिस्तीनी अरब और इजरायली समुदायों के खिलाफ भेदभाव के मामलों में वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट देश में सामाजिक एकता और सामुदायिक सद्भाव के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है। वहीं विक्टोरिया के प्रीमियर जसिंटा एलन ने अपने नए कैबिनेट में पुरुष और लड़कों के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया है। इस नए विभाग की जिम्मेदारी पॉल एडब्रुक को सौंपी गई है। प्रीमियर का मानना है कि समाज में पुरुषों को आज अलग तरह के सामाजिक और मानसिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है और ये मंत्रालय उन मुद्दों को संबोधित करेगा। मंत्री एडब्रुक ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तथाकथित मैनोस्फीयर के बढ़ते प्रभाव को नजदीक से देखा है जो युवाओं के व्यवहार और सोच पर असर डाल रहा है। बात करें भारत की तो मोदी सरकार संसद में आज 3 अहम बिल पेश करने जा रही है। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करना है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला ये विशेष सत्र सदन से लेकर देश की राजनीतिक दिशा तक के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने इस हफ्ते कोएलिशन की नई और कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी की घोषणा की जिसे राजनेताओं से लेकर मानवाधिकार समूहों और विशेषज्ञों हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए सुनते हैं इसी पर ये खास रिपोर्ट, लेकर आ रहे हैं आप तक स्वाति शर्मा।
नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि जो प्रवासी उनके कहे अनुसार ऑस्ट्रेलियाई मूल्य यानी वैल्यूज नहीं दिखाते उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा।
Our door has been opened to people who, far from having an allegiance to Australia, are actively working against our nation.
टेलर का कहना है कि जो देश पश्चिमी उदार लोकतंत्र यानी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं है वहां से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखना जरूरी है।
For too long, we've turned a blind eye to the reality of immigration and integration. Those who migrate from liberal democracies have a greater likelihood of subscribing to Australian values compared to those coming from other places, ruled by fundamentalists, extremists and dictators. If a visa holder undermines our democratic values, doesn't respect the law, or doesn't demonstrate respect for those core values, they will be booted out of Australia.
इस नीति में तीन मुख्य प्रस्ताव हैं। ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज को माइग्रेशन कानून का केंद्र बनाना, जिसका उल्लंघन निर्वासन का कारण बन सकता है। दूसरा, अनाधिकृत प्रवासियों पर कार्रवाई, और तीसरा, वीजा आवेदकों की जांच प्रक्रिया को और सख्त करना। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस नीति को विभाजनकारी, भेदभावपूर्ण और मानवता से रहित बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के कैंपेनर जाकी हैदरी ने इस नीति की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आइस पॉलिसी से की।
When he's referring of, you know, Trump-like policy of screening people's very private social media account, again, it's very deeply concerning, and he's only targeting, or the coalition is only targeting particular nationalities in particular countries.
कोएलिशन शरण चाहने वालों के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा को फिर से लागू करना चाहती है। इस नीति में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के भीतर एक एनहांस्ड सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है। टेलर ने कहा कि सभी वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच होगी।
Coalition will establish an enhanced security screening center. Using the full suite of intelligence screening and enforcement capabilities, the center will stop radicals, extremists and terrorists from entering our country. As part of the enhanced screening process, all visa applicants will be required to provide social media accounts when applying for a visa.
साथ ही अंग्रेजी भाषा में कुशलता को ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनिवार्य शर्त बनाने का भी प्रस्ताव है। इस शर्त के जवाब में होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्ट ने एक बयान में कहा, लाखों ऑस्ट्रेलियाई पूछेंगे, लिबरल्स को अपने माता पिता से दिक्कत क्यों है जो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन अच्छे ऑस्ट्रेलियाई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति लाखों प्रवासियों की कहानियों को नजरअंदाज करती है।
A big part of the Australian story, whether it be people fleeing Eastern Europe, whether it be people fleeing Vietnam, whether it's been people who've come here as international students, has seen our democracy and have said, I want to be part of that, is a good, strong, positive Australian story.
इन प्रस्तावों को लेकर माइग्रेशन विशेषज्ञों ने भी चिंता व्यक्त की है। पल्लवी अरोड़ा, जो विक्टोरिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं, कहती हैं कि इनका असर विभिन्न वीजा श्रेणियों पर देखने को मिल सकता है।
ये प्रपोज्ड पॉलिसी काफी ब्रॉड इम्पैक्ट डाल सकती है अक्रॉस मल्टीपल वीजा कैटेगरीज। सबसे पहले, जैसे कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात की गई है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बहुत सारे पीआर पाथवे वीजा में, जैसे कि स्किल्ड वीजा हो गया, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा या स्टूडेंट वीजा, जहां एप्लीकेंट्स को ऑलरेडी रिक्वायर्ड इंग्लिश को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। बट अगर इसे और स्ट्रिक्ट या मैंडेटरी बनाया जाता है, तो पेरेंट वीजा, पार्टनर वीजा के एप्लीकेंट्स के लिए भी एक मेजर चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इन कैटेगरीज में अभी इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है। एंगस टेलर की जो स्टेटमेंट है, उससे ये भी इंटरप्रेट होता है कि जो लर्निंग इंग्लिश को एज अ ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकते हैं जो पीआर होल्डर्स हैं, और पॉसिबली सिटीजनशिप में भी ये इंग्लिश टेस्ट को मैंडेटरी बना सकते हैं। बट इस पे कोई भी क्लियर लेजिस्लेटिव बेसिस अभी नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रपोजल। दूसरी जो उन्होंने बात की सोशल मीडिया स्क्रूटनी के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि काफी सिमिलर लगती है यूएस मॉडल से, जहां एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। करंटली सोशल मीडिया एविडेंस सिर्फ स्पेसिफिक वीजा जैसे पार्टनर वीजा में यूज होता है एज अ रिलेशनशिप प्रूफ, लेकिन अगर ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट होता है तो सारे सब क्लासेस में ब्रॉडर डिजिटल स्क्रीनिंग हो सकती है। इससे फ्यूचर एप्लीकेंट्स को अपना ऑनलाइन प्रेजेंस केयरफुली मैनेज करना होगा, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स आप ऑनलाइन दे रहे हैं या कोई ग्रुप एसोसिएशन है या शेयर्ड कंटेंट है, उसका बहुत खास ध्यान रखना पड़ सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्जिस्टिंग लॉ अंडर माइग्रेशन एक्ट 1958, स्पेशली सेक्शन 501, ये ऑलरेडी कवर करता है ये सीरियस इश्यूज, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्डक्ट या हेट स्पीच, जिससे ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को रिस्क हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई पर्सन ऑनलाइन या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हेट या सुपरियोरिटी बेस्ड कंटेंट शेयर या प्रमोट करता है, तो उसको ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी पोटेंशियल रिस्क माना जाता है अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ. एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये ऑलरेडी पावर यूज कर सकती है अंडर सेक्शन 501, जिसमें आपका वीजा रिफ्यूज या कैंसिल हो सकता है. उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज हैं उसको वीजा कंडीशन इम्पोज करने की बात की गई है. इसका मतलब ये हो सकता है कि असेसमेंट सिर्फ क्रिमिनल कॉन्डक्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी बल्कि ब्रॉडर, जैसे कि नॉन क्रिमिनल बिहेवियर भी कंसिडर किया जा सकता है. जैसे आपका बिहेवियर, आप क्या बोलते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं और आप ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी की वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं कि नहीं, ये भी चेक हो सकता है, इवन अगर वो क्राइम बेस्ड हो चाहे ना हो. बट इसको कैसे असेसमेंट करनी है, किस सिनारियोज में आप वायलेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज को, इसकी ऑलमोस्ट क्लैरिटी अभी तक नहीं है.
ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार नेट ओवरसीज माइग्रेशन 2023-24 में 4,29,000 से घटकर 2024-25 में लगभग 3,06,000 हो गई. लेबर सरकार भी आने वाले वर्षों में इसे और कम करने का वादा कर रही है. ग्रीन्स पार्टी के सेनेटर डेविड शूब्रिज ने कहा कि यह नीति लोगों को उनके मूल देश और संभवतः उनके धर्म के आधार पर बाहर रखती है और इसे उन्होंने 2026 की व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी बताया.
The Coalition think that reintroducing elements of the White Australia policy is the way forward for Australia in 2026. Actively excluding people on the basis of their country of origin, potentially on their religion. That is not the way forward for Australia. Australia gains so much from immigration. The breadth of talent, the breadth of experience, the diversity that immigration has brought to Australia makes us a strong and proud nation.
फिलहाल यह साफ नहीं है कि विपक्ष की यह कड़ी नीति लागू हो पाएगी या नहीं. एसपीएस न्यूज से हेलिना कृष्णमूर्ति की इस रिपोर्ट को एसपीएस हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने.
इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है. एसपीएस ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत. अपनी स्थिति पर विशेष सलाह के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें.
तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये रिपोर्ट को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा और इसमें बताया गया कि विपक्ष के जो नेता हैं एंगस टेलर, उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव लाने की जो बात है वो सामने रखी है. तो आज का जो सवाल है वो भी आपसे यही रहेगा कि इस पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं. क्या लोगों का सोशल मीडिया देखना और उसका आकलन करना और उस आधार पर यह तय करना कि क्या वे ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज का समर्थन करते हैं या नहीं, क्या यह सही तरीका होगा आने वाले समय में माइग्रेशन जैसे मुद्दे को डील करने का, इस पर आप जो अपने विचार और अपने जवाब हैं वो मुझे 04397997667 पर भेज सकते हैं. चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा. लौटकर आपको मैं मिलाऊंगी कॉमेडियन शारुल चन्ना से और उनसे करेंगे कुछ ढेर सारी बातें. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एसपीएस हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. वक्त हो रहा है 5:19 और वैसे तो आप मेरा कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करते हैं, लेकिन यदि आज के शो में आप मेरे साथ जरा देरी से जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि ब्रेक से पहले हमने नजर डाली थी आज की न्यूज फ्लैश यानी खबरों पर और साथ ही एक खास अंश हम लेकर आए थे जिसमें हमने विपक्ष के जो नेता हैं एंगस टेलर ने हाल ही में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर कुछ अपने जो विचार हैं वो साझा किए हैं. इसी पर ये पूरी रिपोर्ट हमने आपके लिए प्रस्तुत की और सवाल भी यही था कि क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है ये सही तरीका है ऑस्ट्रेलिया की जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उससे डील करने का. तो आप अपने जवाब मुझे 04397997667 पर भेज सकते हैं. और आपको बता दूं कि यदि आपने ये जो अंश है ये मिस कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर जाकर ये अंश और हमारे सभी अंश और कार्यक्रम फिर से सुन सकते हैं. इसके अलावा एसपीएस हिंदी जो है वो इंस्टाग्राम पर भी आ गया है, तो यदि आपने हमें अब तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और फॉलो कर लें. और बात हो रही है इंस्टाग्राम की, तो आपको बता दूं कि आपके लिए शारुल चन्ना, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन है, उनका अंश आज हम लेकर आए हैं और उन्हीं से संबंधित एक बहुत ही मजेदार रील जो है वो हमने हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी डाली है. तो ये साक्षात्कार जो है इसका पहला भाग आप सुने और वो रील जाके जरूर देखें। तो कॉमेडियन शारुल चन्ना का काम अक्सर रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होकर बड़े सामाजिक और गहरे मुद्दों तक पहुंचता है। अभिनय की ट्रेनिंग लेने के बाद वे पिछले 15 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं और कई अलग अलग देशों और दर्शकों के सामने अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। हाल ही में मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल के दौरान SBS हिंदी ने उनसे खूब सारी बातचीत की, जहां उन्होंने हंसी मजाक के साथ साथ गंभीर सामाजिक मुद्दों पर भी अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं प्रीति जब्बल। हमारे आज के मेहमान ने स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी एक अलग और दमदार पहचान बनाई है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अ स्टैंड आउट इन स्टैंड अप। ह्यूमर और सामाजिक मुद्दों को सहजता से जोड़ते हुए उनकी कॉमेडी में एक्टिंग की गहराई और कहानी कहने का अनोखा अंदाज दिखाई देता है। एशिया से लेकर दुनिया के कई मंचों तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद वह अब मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में ब्राउन वुमेन कॉमेडी लाइनअप का हिस्सा हैं। स्वागत कीजिए सिंगापुर में रहने वाली, अब ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान बना रही पंजाबी कुड़ी शारुल चन्ना का। शारुल, मेलबर्न में आपका फिर से स्वागत है। आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुकी हैं, तो इस बार आपके लिए क्या अलग रहा?
जब मैं पहले आई थी, आई थिंक मुझे 8-9 साल हो गए जब मैं पहले आई थी मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल के साथ। इस बार ये थोड़ा अलग है क्योंकि अब डेजी मान जो है, जो ब्राउन वुमेन कॉमेडी चलाती हैं, तो उन्होंने बोला अब एक आवर का हम शो देख रहे थे, अगर आप करना चाहें तो हम आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा क्या है, हम कॉमेडियंस जहाँ पे काम मिलता है वहाँ निकल लेते हैं, बट यहाँ पहुंची तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली। कल मैंने रीजेंट थिएटर में परफॉर्म किया, पूरा ऑजी लाइनअप था और उसमें एशिया को रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छा लगा कि यार यहाँ पे अपनी आवाज़ आप अपने लोकल्स को सुना रहे हैं और आप साड़ी पहन रहे हैं स्टेज पे, तो ये मुझे बहुत एक गर्व फील हुआ।
साड़ी की बात चली है तो फ्रॉम साड़ी टू सॉरी, ये आपका एक गिग था और सीरियसली नॉट सॉरी ये जो इस बार आप इस सेगमेंट को लेके आई हैं, साड़ी बार बार आपकी कॉमेडी में नजर आती है, ये कॉमेडी के लिए इतना अच्छा टॉपिक क्यों है?
देखो, ऐसा है कि ये एक एक्सीडेंटल हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले जब मैं एक दिवाली के फंक्शन के लिए गई थी, दिवाली का टाइम था और उसके बाद एक कॉर्पोरेट शो होना था, तो हमने काफ़ी जैसे पैसे खर्च कर दिए थे दिवाली पे, तो मैंने बोला यार कॉर्पोरेट शो भी कर लेते हैं। तो मैं कॉर्पोरेट शो पे गई तो साड़ी पहन के गई थी, और जब मैं वहाँ पे स्टेज पे साड़ी पहन के खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे लोग बहुत डिफरेंटली देख रहे थे मुझे, पर मुझे बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था स्टेज पे। और तब मुझे रियलाइज हुआ क्यों, क्योंकि मेरी जो दादी थे वो रोज घर पे साड़ी पहनते थे, तो वो घर के काम के लिए साड़ी पहनते थे, सोते भी साड़ी में ही थे। तो मुझे ऐसा फीलिंग आई, एक अनुभव हुआ कि मेरी दादी जी मेरे साथ हैं, और उसमें मुझे एक डिफरेंट सा अवेकनिंग सा फीलिंग हुआ। तो मैंने बोला कि अगर मैं हर कंट्री में जा ही रही हूँ तो मैं साड़ियाँ पहन के लोगों को ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप रोज साड़ी पहन सकते हैं, क्यों हम अपने इंडियन टेक्सटाइल्स को इतना इग्नोर करते हैं और वेस्टर्न कपड़ों को इतनी जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, जबकि साड़ी एक बहुत सस्टेनेबल गारमेंट है और एक बहुत कंफर्टेबल गारमेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साड़ी में अगर आप मोटे भी हो जाओ तो साड़ी आपको एडजस्ट कर लेती है
जी
और वो एक ऐसा गारमेंट है जो आप आगे अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और लोगों के भी काम आते हैं, और वो आप विंटर में भी पहन सकते हैं, समर में भी पहन सकते हैं।
शारुल, सिंगापुर से दुनिया के अलग अलग मंचों तक का आपका सफर रहा है और आपकी भारतीय जड़ें भी उतनी ही मजबूत हैं, इस मिक्स में आपकी सोच को कैसे बदला है और इससे ब्रांड शारुल कैसे बना?
देखो, ऑल्दो मैं इंडिया में पैदा हुई थी और मैं फिर ऑफकोर्स सिंगापुर में मैं आई वॉज ब्रॉट अप, बट हर साल मेरे पेरेंट्स 3 बार साल में हम इंडिया जाते ही जाते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मम्मी ने बोला कि आप अपने ना रूट्स से आप अलग नहीं हो सकते और आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो हमें स्ट्रीट्स में जाने ही नहीं देते थे, वो कहते थे बाहर जाना ही नहीं है, तो हम घर में ही ज़्यादा सीखते रहते थे कि क्या करना है, अच्छा ये ऐसा होता है, चूल्हा ऐसा लगता है और लोग ऐसे होते हैं। और तो सिंगापुर ने मुझे क्या सिखाया है कि क्योंकि हमारे वहाँ पे 4 रेसेस हैं, हमारे चाइनीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, इंडियंस हैं और यूरेशियंस हैं, तो मैं बहुत टॉलरेंट बन गई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल्स कल्चर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि आप बहुत ही टॉलरेंट बन जाओ। बट ये भी हुआ कि अब मैं सबका ही मजाक उड़ाती हूँ है ना. अब मेलबर्न में ये अलग है कि आप मजाक तो उड़ा सकते हो बट इंडियन सेंसिटिव भी होते हैं. तो मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा अलग है जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं, मेरे दिमाग में तो मैं एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी को परफॉर्म कर रही हूँ. बट यहाँ का हर कंट्री का अपना अपना एक तरीका होता है और उनके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये भी मैं सीख रही हूँ. तो आई कम विद अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. और अभी मैं इंडिया का टूर भी करके आई हूँ और मैं 3 सालों से कर रही हूँ और मुझे इंडिया इतना पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कितना आगे बढ़ गया अपनी सोच में. और आप जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मैं कुछ सीख करके आती हूँ. और जब मैं अपने जब वापस जाती हूँ अपने जहाँ पे स्मॉलर कम्युनिटीज है, मेलबर्न हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, जहाँ पे इंडियन स्मॉलर कम्युनिटीज है, मैं वहाँ जाकर उनको कहती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है. हम ज्यादा कंजर्वेटिव रह गए और वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए. मैं ये बोल रही हूँ सोच में, ये नहीं कि आप अपना कल्चर फेंक दो और कुछ चीजें ऐसी करो. मैं ये बोल रही हूँ कि अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मिक्स्ड मैरिजेस में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं. उनको ये कि आप अंदर से कल्चर है ना आप में, आप मंदिर देखते हो तो आप माथा टेकते हो कि नहीं, और अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को कैसे आप ट्रीट करते हो. तो ये चीजें बहुत अलग हो गई हैं
जी. आपने अभी कहा कि बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, कहीं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ईरान है, इसराइल है, यूक्रेन है, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है और सब किस्म कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है. तो ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है ह्यूमर की क्या भूमिका होती है? क्या ये लोगों को थोड़ी राहत देता है, सोचने पर मजबूर करता है, या मुश्किल समय में लोगों को जोड़ने में मदद करता है?
आई थिंक मेरे लिए ऐसा है कि अगर कोई ऑडियंस आपके पास आ रही है तो उनको बस खुश करके भेजो. अब उनको कैसे भी खुश करो, उनको बस ये भुला दो कि बाहर प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं. अगर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं और वो आपके पास बैठे हैं तो खुश होकर वापस जाएं. बहुत कमेडियंस ऐसे होते हैं जो सोशल कमेंट्री वाली स्टैंड अप भी करते हैं, जो कि मैं कम करती हूँ क्योंकि मतलब मैं क्या उनको बोलूं, जो कि यू नो लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं. अभी मैं जब इंडिया जाती हूँ लोग मुझे बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछते हैं कि आप मोदी फॉलोअर हैं, मोदी जी के फॉलोअर हैं कि आप उस तरफ के फॉलोअर हैं. मैं बोला मैं किसी के फॉलोअर नहीं हूँ, मैं सिंगापुर से हूँ, हम एशिया का स्विट्जरलैंड है, हमें नहीं इमोशन कोई भी इस बारे में. मैं चाहती हूँ कि देखो, एक तो आप लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, लड़ाई मत करो, अपना एक दूसरे की टांग मत खींचो. और बट ये अब जब हम कलयुग का टाइम है तो ये तो होना ही है, तो आपने इसके साथ चलना ही है, आप इफ्लो के साथ. एशिया का राइजिंग आ रहा है मुझे लगता है
जी,
तो एशिया का राइज होगा तो कहीं और तो गिरेगा ही गिरेगा. अब उसके लिए एक रावण आएगा तो वो रावण किसी भी तरीके से आ सकता है,
किसी भी नाम का हो सकता है,
किसी भी नाम का हो सकता है, कुछ भी उठ के कुछ भी बोल सकता है सुबह के टाइम.
शाहरुल, आजकल सब लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ग्लोबल चार्मिंग में ज्यादा दिलचस्पी है जो आप करती हैं. एक स्टैंड अप कॉमिक के तौर पर आप हमेशा लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हैं, चाहे सिंगापुर हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया. आपको क्या लगता है कि कौन सी बातें हर जगह लोगों को छू जाती हैं और ऐसी क्या चीज है जो दुनिया भर के लोगों को सच में जोड़ती है आपस में?
मुझे लगता है कि हम जो इंसान है ना, हर देश में एक जैसे ही हैं. सबको खुश रहना और सबको काइंडनेस चाहिए, है ना. हम सबको रिलेशनशिप का भी इशू है, मदर इन लॉ का भी इशू है, वो चाहे आप उसको उनके फर्स्ट नेम से बुला रहे हो या मम्मी जी बुला रहे हो, इश्यूज तो सेम ही हैं, डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट. और आपके जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, कुछ बहुत अमीर लोग हैं उनको ह्यूमर बहुत, वो ऐसा लगता है उनको क्योंकि ह्यूमर डिफरेंट पसंद है, बट ह्यूमर सबको एक जैसा ही पसंद है. सो आई फील कि जनरल जो आप रिलेशनशिप जोक्स हमेशा काम करते हैं, दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर, है ना. लड़कियों के लड़की लड़कियां कैसे बिहेव करती हैं, आदमी कैसे होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सब, आप एक कोई ऐसी चीज नहीं जो सब साथ में बैठ के हंस सके. हंस सकते हैं पेरेंट्स के बारे में, हंस सकते हैं, बट कहीं पे तो कोई नीचे लग ही रहा होता है. ये स्टैंड अप का रूल है, है ना. जैसे अब मैं मजाक उड़ाती हूँ, जैसे इंडियन आदमियों के गंजेपन का मैं बहुत मजाक उड़ाती हूँ और मेरा ये मानना है कि क्योंकि वो जब उनकी जब मम्मी और बीवी लड़ रहे होते हैं तो वो कुछ कह नहीं पाते ना, तो उनकी हेयर लाइन पीछे बैकवर्ड्स वॉक करना शुरू हो जाती है, इसीलिए इंडियन आदमी बहुत जल्दी बॉल्ड हो जाते हैं. आप उनकी हेयर लाइन के हिसाब से पता कर सकते हो कि कितने साल की शादी के हुए हैं.
अच्छा.
हाँ, तो ये चीजों में आप देखो, लोग तो हंस रहे हैं, सब हंसते हैं, बट एक आध आदमी होता है जिसका ईगो हर्ट हो जाता है. एक आध औरत होती है जिसका, अरे तुमने ऐसे कैसे बोला, मैं अपना गोरा बॉयफ्रेंड लेके आई थी, तुमने उसका मजाक उड़ाया. तो अभी क्या कर सकते हैं आप, बस सबको ऐसा हंसा सकते हो एज लॉन्ग एज रूम में लाफ्टर है. आपने अपना जॉब कर दिया है
जी,
और जब आप स्टेज से फिर हटें, फिर आप लोगों से कनेक्टेड रहें, अपना ईगो साइड में रखें, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है हमारे प्रोफेशन में. ईगो को साइड में रखें, और जो आपकी जो किसी चीज़ की लत मत लगने दीजिए, वो चाहे अल्कोहल की हो या ड्रग्स की हो, अपना काम कर दीजिए, अपना कर्म करो और आगे बढ़ो.
तो दोस्तों, ये आपने सुना शारुल चन्ना को, जो कि यहाँ पर आई हुई थी अपनी परफॉर्मेंस लेके मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में. तो बताएं कि ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, और आपको बताऊं कि बातचीत यहाँ खत्म नहीं होती है, इसका जो दूसरा भाग है वो हम आप तक जल्द लेकर आएंगे. चलिए, जब तक आपके संदेश मेरे पास आ रहे हैं, एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और लौट कर हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. सुनते रहें SBS हिंदी. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. और आपको बता दूं कि आज की शाम का पहला संदेश हमें आया है पीयूष जी की ओर से, जिन्होंने लिखा है नमस्ते भव्या जी. और पहले उन्होंने गलती से मेरा जो नाम है वो अलग ले लिया था, तो कोई बात नहीं. आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूं कि आगे का जो कार्यक्रम है वो आप खूब इंजॉय करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे. तो साहित्य और कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनीता बरार इसी विषय पर बात कर रही हैं तकनीक के क्षेत्र में एक जाने माने नाम बालेंदु शर्मा जी के साथ. बातचीत के पहले भाग में हमने जाना था कि नवंबर 2022 से कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या बदलाव आए हैं, और साहित्य के संदर्भ में उसकी रचनात्मकता क्षमता अब कैसी है, अब आगे क्या संभावनाएं आती हैं, इसी पर इस बातचीत को आगे बढ़ाया गया है. तो आइए सुनते हैं.
नमस्कार, SBS पर मैं हूँ अनीता बरार. क्या साहित्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव से अछूता रह सकता है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लेखकों कवियों की एक बहुत ही बड़ी उपज तो पैदा हो गई है, और कहानियां कविताएं भी लिखी जा रही हैं. हो सकता है कि भविष्य में बहुत ही तेजी से ढेरों काव्य महाकाव्यों उपन्यासों की रचना भी होने लगे. साहित्यकार तो अपनी विशेष शैली अपने विषयों की वजह से जाने जाते हैं, तो उन AI रचनाकारों की पहचान उनकी किस शैली से होगी, तो इस पर बालेंदु दधीची जी बताते हैं.
जी, तो ये संभावना जो आपने प्रकट की वो बिल्कुल जायज है आपका प्रश्न. ये बात, ये खतरा जरूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहित्य का कमोडिटाइजेशन कर सकती है. उसको एक ऐसे उत्पाद में बदल सकती है जिसको कोई भी बना ले और उसको वो बिक रहा हो. मतलब बिल्कुल सोचिए, करोड़ों रचनाएं की जा रही हों और करोड़ों रचनाएं डिस्ट्रीब्यूट हो रही हों, वितरित हो रही हों, लेकिन उन करोड़ों रचनाओं का शायद कोई जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसी स्थायी महत्ता ना हो, उनकी वैल्यू ना हो, कोई 2 दिन बाद या 3 दिन बाद समाप्त भी हो जाए, कोई उसको याद भी ना करे, ऐसी दुनिया में शायद हम लोग जा रहे हैं. दूसरा, आपने जो शैली की बात कही, इसको आप संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी शैली को सीख सकती है. तो जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी 2000 या 50 या 100 रचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दी
जी,
तो उसने आपकी शैली भी सीख ली, और उसने उसकी मदद से जब आपने अगला उपन्यास लिखा तो उसी शैली में वो अपना आपका अगला उपन्यास लिख सकती है. तो आपकी पहचान को वो विकृत करने की बजाय शायद उसको आगे बढ़ा सकती है,
अच्छी पहचान दे दे.
और कोई दोनों पक्ष आप ले सकते हैं जी.
और एक घोस्ट राइटिंग होती है लेखन की दुनिया में, कि आपने कुछ पात्रों की कल्पना की और किसी और ने आपके लिए लिख दिया, नाम आपका ही जाता था. अभी एआई आपके लिए वही काम करेगा, लेकिन यानी मेरा मतलब है कॉपीराइट की तरफ।
तो यहाँ पर जो आपने प्रश्न उठाया वो एक नैतिकता से भी जुड़ता है
जी
और बौद्धिक संपदा से भी जुड़ता है। आज हम लोग जिस तरह की सोच में हैं, वो सोच इस बात को स्वीकार नहीं करती, इसको अनैतिक समझती है कि यदि हमने अपने लेखन में किसी अन्य व्यक्ति को जोड़
शामिल
लिया और
किया।
उनको नाम नहीं दिया, या मान लीजिए जैसे आपने घोस्ट राइटिंग की बात की, घोस्ट राइटिंग की, तो मन में एक नकारात्मकता का भाव आता है कि
जी
फिर।
बिल्कुल
लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इसमें बदलाव आएगा, इस सोच में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण बन गया, बन जाएगा या बन गया है हमारे लिए, जैसे कंप्यूटर एक उपकरण है।
जी
किसी जमाने में साहित्यकार पन्नों पर अपनी रचनाएं लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने टाइपराइटर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो एक नया उपकरण हमारे बीच में आया। बाद में कंप्यूटर ने उसकी जगह ले ली, वो भी पेन और पन्ने की जगह कंप्यूटर और कीबोर्ड हो गया, वो एक उपकरण बन गया। इसी उपकरण के रूप में बाद में इंटरनेट का आगमन हुआ, हालांकि उसकी कॉन्सेप्ट अलग है, अवधारणा अलग है, लेकिन आप उसको एक उपकरण भी
जी
मान सकते हैं क्योंकि वहां से हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं,
हाँ
सूचनाओं को खोजते हैं। तो वो एक उपकरण आया, उसकी मदद साहित्यकारों ने भी ली, बाहरी साहित्य पढ़ने के लिए, अनुवादों को
जी
पढ़ने के लिए,
बिल्कुल
नई शैलियों को जानने के लिए एक उपकरण हमारे बीच में आया। और हमारा साहित्य स्वाभाविक रूप से ये जो नई चीजें थी उसमें भी परिलक्षित हुई, रिफ्लेक्ट हुई।
हाँ जी
उसी तरह से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक उपकरण के रूप में हमारे पास है। तो लगभग जो हमारी साहित्य की पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, उसमें जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत बड़ा रूपांतरण आने वाला है। क्योंकि मैंने आपसे
हाँ
जिक्र किया कि एक समानांतर साहित्यिक पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम विकसित होगा। आज एआई की मदद लेते
मदद
हुए
थी
साहित्य का आना स्वीकार्य नहीं है, शायद अनैतिक भी है, कॉपीराइट का इशू भी आएगा मन में, लेकिन धीरे धीरे चूंकि ये प्रधान रूप से हमारी हमारे रचनात्मकता का हिस्सा बन जाएगा, तो ये स्वीकार्यता भी आ जाएगी। यहां मैं एक बात बता दूं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो तरह से जो देखने वाले लोग हैं उनमें से दूसरे श्रेणी में आता हूं।
जो कि
पहली तरफ जो देखने वाले लोग हैं वो हैं जो जो अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं और वो ऐसी बातें कहते हैं कि नहीं देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं कर सकेगी या वो नहीं कर सकेगी।
जी
मैं जिस दूसरे खेमे से आता हूं, वो खेमा वो है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को देखा है
जी
और जो साहित्य और पत्रकारिता से भी और हिंदी से भी और भाषाओं से जुड़ा हुआ है,
जुड़े हुए हैं जी
यानी यानी जो दोनों के दर्द समझता है। मैं अपने आप को तसल्ली देने या साहित्यकारों को या लेखन को या साहित्य को तसल्ली देने वाला काम नहीं करता, बल्कि मैं उसको सतर्क करने वाला काम करता हूं। गंभीरता से लेने की जरूरत है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विरुद्ध तर्क देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ अपनी धारणाओं के आधार पर ये बात कहते हैं कि
हाँ
नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकेगा, लेकिन हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप का एक आश्वासन ही है कि नहीं नहीं कैसे कर लेगा, इंसान का दिमाग की बराबरी कैसे कर लेगा, उस रचनात्मकता की बराबरी एआई कैसे कर लेगी, वो तो मशीन है। लेकिन एआई जो कुछ कर रही है वो एक ठोस तथ्य है, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग, वो प्रमाण दे रही है रोज आपको। तो दोनों में ही अंतर है, हम धारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर उसका खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं जो तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर चल रही है।
जी
इसलिए उसके बारे में सतर्क करना जरूरी है कि हम संभल जाएं या हम अपने आप को उस आने वाले समय के अनुसार ढाल लें। सन 2022 के नवंबर तक ये ठीक था हमारा सोच, लेकिन 2022 के बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस दौर में ये सोच टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तो जिस अंदाज में एआई के मॉडल रोज आ रहे हैं, नई नई क्षमताओं को लेकर आ रहे हैं, वो आश्चर्यजनक है। सिर्फ 3 साल की ही तो अवधि हुई है अनिता जी, और 3 साल के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के काम में से लगभग 70% काम को करने में सक्षम हो गई है। ये तो
जी
27 में भी
बिल्कुल
ग्रो करेगी, 28 में भी बढ़ेगी, 29 में भी बढ़ेगी, तो कहाँ जाएंगी इसकी कल्पना हम कर सकते हैं।
जी। जो प्रश्न थे मन में आपने उनके बारे में जिस तरह से बताया है, मैं यही कहूंगी कि एक अलग ही अनुभव रहा मेरा आपके साथ बात करने का।
बहुत
तो
अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपके प्रश्नों से मुझे भी एक नया डायमेंशन जो है मेरे सामने खुलता है, और
जी
बहुत धन्यवाद आपके उन जिज्ञासाओं के लिए।
आपने हमारे लिए समय निकाला है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगी।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये अंश जो था ये आप तक लेकर आई थी अनीता बरार, और इसमें बात की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आने वाले समय में एआई का जो दौर है उसमें साहित्य किस तरह से प्रभावित होगा। और इस अंश से जुड़ी कोई भी बात यदि आप हमें कहना चाहते हैं, अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो नंबर है 0439799767। चलिए एक छोटा सा आज की शाम का आखिरी ब्रेक लेते हैं और लौटकर आपको सुनाऊंगी कुछ बढ़िया से गाने। तब तक आप मुझे बताएं 0439799767 पर कि आप जुड़े हुए हैं आज की शाम मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया में करियर बदलने के लिए क्या है उपलब्ध संसाधन, कैसे सुनिश्चित करें कि नौकरी बदलना आपके लिए एक तनाव भरा काम न हो, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में।
आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
अपनी नौकरी या करियर के बारे में दोबारा सोचना बिल्कुल सामान्य है। कुछ लोग नए अवसरों की तलाश में हैं, तो कुछ ऐसे काम की खोज में हैं जो उनके कौशल, मूल्यों या परिस्थितियों के बेहतर अनुरूप हो। करियर बदलना एक चुनौतीपूर्ण कदम हो सकता है, चाहे आप अपने कामकाजी सफर की शुरुआत में हो या कई सालों का अनुभव रखते हो। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में हम आज जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में करियर बदलने की प्रक्रिया कैसी होती है, विश्वसनीय जानकारी कहाँ मिलेगी, किस तरीके की मदद उपलब्ध है, और अगर अंग्रेजी आपकी पहली भाषा नहीं है तो प्रक्रिया को कैसे साधा जा सकता है। साथ ही विशेषज्ञों से समझेंगे कि किन क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ रही हैं और किन कौशलों की मांग ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब अपने करियर में नई दिशा लेने का समय आ गया है, तो आप अकेले नहीं हैं। 2024 के एक सर्वेक्षण के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हर दो में से एक कर्मचारी इसी स्थिति में है। कई लोगों के लिए करियर बदलना नए सिरे से शुरुआत करना नहीं, बल्कि अपने मौजूदा अनुभव और कौशल पर आगे निर्माण करना होता है। करियर कोच एलिस चुंग का कहना है कि आजकल वे ऐसे बदलाव पहले से कहीं ज्यादा देख रही हैं।
Career change is absolutely becoming the norm, and we saw that through the COVID pandemic because people were at home and really finding a different way of life. And maybe through that experience, many realized that their work no longer aligned to their values, their well-being, their lifestyle goals.
आम धारणा है कि करियर बदलना कम उम्र में ज्यादा आसान होता है, लेकिन करियर कोचों का कहना है कि उम्र या जीवन का कोई चरण बाधा नहीं है। अगर लोग चाहें तो किसी भी उम्र में करियर बदल सकते हैं। वे ये भी मानती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आए प्रवासियों के पास कुछ नौकरियों के लिए जरूरी स्थानीय अनुभव की कमी हो सकती है, इससे आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है, लेकिन वे कहती हैं कि अपने कौशल और प्रतिभा पर भरोसा करना बहुत आवश्यक है।
So I say the first thing is sit down and really sell yourself. What am I good at? What are my strengths? What else can I bring compared to a local applicant? And then really go through selling yourself on that resume, going to interviews with confidence, and even if language might be your barrier. I think nowadays in Australia, I mean, everyone's got an accent, really. And so as long as people can understand you and then obviously really work on your self-worth and don't be afraid. If you get a no, you've just got to keep going until you find that first step.
कभी-कभी डर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है, खासकर तब जब करियर बदलना जोखिम भरा या अनिश्चित लगता हो। लेकिन करियर बदलना हमेशा एक बड़ा कदम उठाना ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एलिस चुंग कहती हैं कि आप इसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं और पूरी तरह निर्णय लेने से पहले नई दिशा को आजमाने के कई तरीके होते हैं।
Why not set up a side business or a passion project? Explore what you like, build up some skill sets, if anything, and then once you're comfortable, you can perhaps transition into that full time. And you don't have to do it alone will be my final tip. There are organizations out there who can help you, universities, local councils. You've got government support as well as professional coaches out there who have been down your path.
सरकारी सेवाओं के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध है. आप अपने राज्य या क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए नई स्किल्स सीखने यानी रीस्किलिंग, व्यावसायिक शिक्षा और अपने इलाके में नौकरी के रुझानों से जुड़ी जानकारी और मदद प्राप्त कर सकते हैं. कुछ राज्यों जैसे विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वन स्टॉप केंद्र भी हैं जहां करियर ट्रेनिंग और रोजगार से जुड़ी मुफ्त सहायता दी जाती है. क्रेग रॉबर्टसन विक्टोरियन स्किल्स अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो पूरे राज्य में कई स्किल्स एंड जॉब्स केंद्र चलाती है. वे बताते हैं कि भले ही ये केंद्र टेफ कैंपस में स्थित हो, लेकिन उनका ध्यान केवल व्यावसायिक शिक्षा तक सीमित नहीं है.
They are a service that's available to the general public, and because they operate in community, they have a good understanding of jobs that are in the particular region. They obviously have an understanding of vocational education pathways that can assist someone, but equally they also have professional careers advisors who can give that independent careers advice.
सामने सामने मिलने वाली सहायता के अलावा ऑनलाइन टूल्स भी लोगों को अपने अगले कदम की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे सरकारी संसाधन भी हैं जिनके माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई श्रम बाजार की जानकारी मिलती है, और ऐसे टूल्स भी उपलब्ध हैं जो करियर बदलने की प्रक्रिया को समझने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं. जैसे एक विकल्प है yourcareer.gov.au वेबसाइट, जहां आप नए करियर विकल्पों को खोज सकते हैं, अपनी स्किल्स की कमी यानी स्किल गैप को समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता है. Victorian Skills Authority से Craig Robertson बताते हैं.
Mainly it's an online search engine where you really can put in a lot of questions about areas that you would like to think about changing your career to. It will feed back information like potentially what are the job prospects, what are the wages outcomes, and what would be the courses or units that would most prepare you to be competitive for some of those jobs.
ऑटोमेशन के कारण उद्योगों और कार्यस्थल की संस्कृति में तेजी से बदलाव आ रहा है, और ऐसे में नए कौशल सीखना यानी अपस्किल करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी होता जा रहा है. जो कर्मचारी नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट रखते हैं, उनकी मांग अधिक रहती है. अगर आप नए कौशल सीखने के लिए तैयार हैं, तो अपने करियर लक्ष्यों के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ी ट्रेनिंग जैसे कोर्स या सर्टिफिकेशन पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है. यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड बिजनेस स्कूल से वरिष्ठ लेक्चरर डॉक्टर कैरोलाइन नाइट इस बारे में विस्तार से बताती हैं.
I think, you know, industries are particularly looking for people with AI competency. Workplaces are changing, not just in terms of where, when and how it works, but all the different technologies are evolving very fast. It means younger generations will need to be very adaptable and have those competencies with using AI and different types of AI.
मौजूदा और भविष्य के नौकरी बाजार के रुझानों की बात करें तो तकनीक ये भी बदल रही है कि लोग कैसे और कहां काम करते हैं. कई उद्योगों में हाइब्रिड वर्क यानी ऑफिस और घर से काम करने का मिश्रण अब स्थायी रूप से बना रहने वाला है. डॉक्टर नाइट समझाती हैं.
People are sort of expecting that flexibility now, and they feel more able to ask for it because it feels like there's been a culture shift in terms of, you know, now technology needs have improved so that we can work from home much more easily. You know, security has improved in many ways in the platforms that we're using, so the option is there to work from home. We've had that, you know, natural experiment with COVID where everyone was working at home and actually things didn't fall apart. Obviously, frontline workers are never going to be able to work from home, at least all the time. But in most industries, there's still roles where potentially people can work from home.
और अंत में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है. लोग अलग अलग कारणों से करियर बदलने का फैसला करते हैं. कुछ लोग नए अवसर, बेहतर वेतन या अधिक संतोषजनक काम के लिए ऐसा करते हैं. कुछ लोगों को नकारात्मक परिस्थितियों जैसे खराब कार्य का वातावरण या बर्नआउट से बाहर निकलना होता है. अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो डॉक्टर नाइट की एक सलाह आपके काम आ सकती है.
So if people are looking for a new career, that's a shame if you're sort of driven out of a career that potentially you would have loved. because you've got so burnt out, you can't deal with that environment anymore. I've always advocate, you know, if you are feeling overwhelmed, to have, if you can, that initial discussion with the manager and say, hey, can we talk about this? You know, talk about some of the things that might be causing a problem. But if you feel like you don't fit the job, then definitely it's a good idea to move.
ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से जोई थॉमडू और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया।
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।
तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई वैशाली जैन, और उम्मीद करती हूँ इससे आपको खूब सारी बातें पता चली होंगी। चलिए आपको बता देती हूँ कि पीयूष जी ने एक गाना रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ये गाना आज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले एक बढ़िया सा गाना बजाना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, एक और चीज आपको बता दूं कि क्रिकेट लवर्स के लिए SBS लेकर आया है एक बहुत ही अच्छी खबर। NITV अगले हफ्ते में होने वाली नेशनल इंडिजीनियस क्रिकेट कंपटीशन के दो दिनों का प्रसारण करेगा। ये टूर्नामेंट 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कुल 13 टीमें विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के अंतिम दो दिनों का लाइव प्रसारण किया जाएगा NITV पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मैचेस जिनके बारे में आपको अभी मैं बताऊंगी, ये हिंदी, पंजाबी और दरी भाषा में भी इनकी जो कमेंट्री है वो उपलब्ध होगी। तो आइए एक नजर डालते हैं इन मैचेस पर। शनिवार यानी 18 अप्रैल को जो पुरुष राउंड मैच होगा साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेज नॉर्दर्न टेरिटोरी के बीच, शनिवार को जो महिला सेमीफाइनल मैच होगा, रविवार को जो वुमेन्स सेमीफाइनल होगा, और रविवार को फिर से 1:40 पर जो मेंस फाइनल मैच होगा। ये आखिरी के जो तीन मैचेस हैं, इनकी जो टीम है वो अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। ऐसे में हमारे दर्शक इस प्रतियोगिता को SBS ऑन डिमांड पर देख सकेंगे, जबकि बाकी सभी मैच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के YouTube चैनल पर भी स्ट्रीम किए जाएंगे। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद 20 अप्रैल की शाम को सभी इन लैंग्वेज कमेंट्री वाले मैच जो होंगे वह SBS ऑन डिमांड पर भी उपलब्ध होंगे। तो तारीख न भूलें ताकि आप इंजॉय कर सकें क्रिकेट अपनी भाषा में। तो दोस्तों, मैसेज आया है मुझे कुणाल जी का क्रैनबर्न से, कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दैट सॉन्ग, और बता रहे हैं कि ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश का। ऐसे ही हमें मैसेजेस भेजते रहें ताकि हमें भी आपसे बातचीत करने में मजा आए। चलिए, आज के लिए आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी और अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। मंडे को कोशिश करूंगी जो मंडे का शो है वो जरा हटके हो, कुछ नया आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तो ट्यून इन करना ना भूलें, और एक बार फिर से आप सभी का मेरे यानी भव्या पांडे के साथ और SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।